నమో అరిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆయర్యాణం, నమో వజ్రాయాణం, నమో లోయే సౌవసాహూణం. సిద్ధమణంతమణీంద్రియ మణువ మమ పద్ధ సౌఖమణవజ్రం, కేవలపహోహణిజ్య దుర్ణయతిమిరం జిణం నమః.
ఏ వీరసేన ఆచార్య ద్వారా రచిత ధౌలా నామ కి జో టీకా హై, జో మూల గ్రంథ షట్ఖండాగమ ఉస్కి టీకా హై, ఔర్ షట్ఖండాగమ కి రచనా భూతబలి ఔర్ పుష్పదంత ఆచార్య నే దర్శన ఆచార్య కే ఉపదేశ కే అనుసార్ కీ తీ. ఉస్మే అభి హమ్ ఆ గయే హై 44 పేజ్ పర్. ప్రథమ మే ప్రథమ గ్రంథ కి శురువాత్ కైసే హోతీ హై, మంగళ ఆది జో 6 బాతే బతాయి జాతీ హై, ఉస్మే మంగళ సంబంధీ పూరా నిరూపణ ఆ గయా ఇస్మే. నిమిత్త హేతు ఆది ఉస్కి చర్చా డీటెయిల్ చర్చా ఆగే కి చల్కర్ కరేంగే. తో షట్ఖండాగమ కా జో పహిలా శ్లోక ఎనే హమ్ యే ఉస్కో గాథా కహేంగే. సూత్ర కహా యహ మూల గ్రంథ కా పహిలా సూత్ర జిస్కో హమ్నే మంగళ సూత్ర కహా థా, జిస్కో నమోకార మంత్ర కహతే హై, అభి ఉస్కా వివేచన యహాన్ సే శురూ హో జాతా హై. జిస్ గ్రంథ కి టీకా రచనీ హై కర్నీ హై, ఉస్ గ్రంథ కా జో పహిలా శ్లోక హై, పహిలీ గాథా హై, ఉస్కీ చర్చా అబ్ శురూ హో జాతీ హై. తో యహాన్ పహిలే మే పహిలే నమో అరిహంతాణం కహతే హీ అరిహంతోం కో నమస్కార్ హో ఉస్కా అర్థ హై. తో అరిహంత క్యా హై, ఉస్కా అర్థ క్యా హై, ఉస్కీ చర్చా యహాన్ చల్ రహీ హై. ఫార్టీ ఫోర్ పేజ్ సే శురూ హో జాతా హై. తో అరిహంతాణం మే అరిహంత కా అర్థ హోతా హై అరి యానీ శత్రు, ఔర్ ఉస్కా హనన్ కర్తే హై, ఉస్కా నాశ కర్తే హై. తో జో శత్రువోం కా నాశ కర్తే హై ఉస్కో అరిహంత కహా. తో యహాన్ కౌన్ సే శత్రు కీ బాత్ కర్ రహే హై, క్యోంకి యే తో రాగ ద్వేష సే రహిత పూర్ణ వీతరాగి హై, తో క్యా ఉన్హే భీ కోయి శత్రు హై ఔర్ ఉన్కా భీ నాశ కర్తే హై. తో యహాన్ అరి కా అర్థ పహలే బతాయేంగే. కల్ హమ్నే దేఖా థా ఉస్కో ఫిర్ దుబారా దేఖతే హై కి మోహ కో హీ యహాన్ అరి కహా హై, క్యోంకి ఉస్కే హీ కారణ జీవ కో దుఃఖ కీ ప్రాప్తి హోతీ హై ఔర్ ఉసీ కే కారణ ఉస్కా జన్మ మరణ రూప సంసార చల్తా రహతా హై. వహాన్ పర్ ప్రశ్న పూచా థా కి క్యా అకేలే మోహనీయ కో హీ యహాన్ శత్రు కహా, క్యా అన్య కర్మోం కో క్యూ నహీ కహా శత్రు, క్యా కహా యహాన్ ఏక్ పర్స వాలి శంకా ఫిర్ లేతే కి కేవల్ మోహ కో హీ అరి మాన్ లేనే పర్ శేష్ కర్మోం కా వ్యాపార నిష్ఫల్ హో జాతా హై, యానీ అన్య కర్మోం కా జో ఫల్ వహాన్ మిల్ రహా హై, ఉస్కా జో కార్య చల్ రహా హై, వో కుచ్ హై నహీ ఐసా మాన్నా పడేగా. తో ఉస్కా సమాధాన్ హై, ఐసా నహీ హై, క్యూంకి బాకీ కే సమస్త కర్మ మోహ కే హీ ఆధీన్ హై. యే ఆధీన్ కిస్ తరహ సే హై, మోహనీయ కే హీ కారణ అన్య కర్మో కా బంధ కిస్ తరహ హోతా హై, ఉస్కీ చర్చా హమ్నే పర్సో కల్ కీ తీ. మోహ కే వినా శేష్ కర్మ అప్నే అప్నే కార్య కీ ఉత్పత్తి మే వ్యాపార కర్తే హుయే నహీ పాయే జాతే హై, జిస్సే కీ వే భీ అప్నే కార్య మే స్వతంత్ర సమ్ఝే జాయే. ఇస్లియే సచ్చా అరి యానీ సచ్చా జో శత్రు హై, కల్ప్రిట్ హై, జో మోహ హీ హై ఔర్ శేష్ కర్మ ఉస్కే ఆధీన్ హై, ఉస్ పర్ జో శంకా హై వో వహాన్ సే అభీ శురూ కరేంగే. యహాన్ తక్ తో హమారీ చర్చా హో చుకీ థీ. అబ్ ప్రశ్న పూచ్తే హై, శంకా హై కి మోహ కే నష్ట హో జానే పర్ భీ కితనే హీ కాల్ తక్ శేష్ కర్మో కీ సత్తా రహతీ హై, ఇస్లియే ఉన్కా మోహ కే ఆధీన్ హోనా నహీ బన్తా. మోహ కీ సత్తా కబ్ నష్ట హో జాతీ హై, సత్తా మే సే మోహ కబ్ నష్ట హో జాతా హై, యాద్ హై కుచ్? దసవే గుణస్థాన్ మే, దసవే గుణస్థాన్ మే పూర్ణ నష్ట హో గయా, ఫిర్ భీ ఆగే అన్య కర్మో కా కార్య ఉస్కా ఫల్ కుచ్ నా కుచ్ దేఖనే మే ఆతా హై. తో శంకా హై కి దూసరే కర్మో కీ సత్తా తో రహతీ హై, ఇస్లియే ఐసా మాన్నా ఉచిత్ హోగా కి వే మోహ కర్మ కే ఆధీన్ నహీ హై. అబ్ ఉస్కా సమాధాన్ కర్తే, ఐసా నహీ సమజ్నా చాహియే, క్యూంకి మోహ రూప్ అరి కే నష్ట హో జానే పర్ జన్మ మరణ కీ పరంపరా రూప సంసార కే ఉత్పాదన కీ సామర్థ్య శేష్ కర్మో మే నహీ రహతీ. అబ్ జిస్నే దసవే గుణస్థాన్ మే కర్మో కా నాశ కర్ దియా, క్షయ కర్ దియా హై, ऐसे जीव में फिर दोबारा जन्म लेने की योग्यता ही नहीं है। जो कुछ कर्म बचे है उसमें ऐसी पात्रता नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है कि अभी उस जीव को अभी भी घूमना पड़े। जो उस जो भव है उसका वो तो चलेगा, उसमें भी बाकी चर्चा करेंगे हम। तो उसका जो अन्य कर्मों का सत्व है वो असत्व के समान हो जाता है, यानी नहीं के बराबर मानना पड़ेगा उसको। तथा केवल ज्ञानादि संपूर्ण आत्मगुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है। यानी मोह ही ऐसा है कि जो केवल ज्ञानादि उसमें आत्मा के जो सभी गुण है उसमें जो विभाव रूप परिणाम चल रहा है, क्यों चल रहा है? उसमें ये मोह निमित्त है, क्योंकि स्वभाव रूप जो उसका आविर्भाव होना यानी प्रकट होना, जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट होना उसको कहते हैं आविर्भाव। और उसको रोकने में समर्थ कारण, समर्थ यानी मेन कारण कौन है वहाँ? मोह। यहाँ निमित्त की बात है, जीव का अपना जो मोह परिणाम है वो एक्चुअल कारण है, और उसी समय सामने मोहनीय कर्म है उसको निमित्त कारण कहेंगे। यहाँ निमित्त की भाषा में चलेगा, परंतु अभी तो हमें तो निमित्त उपादान का ज्ञान है ही, तो जब जब निमित्त की बातें आएगी तब ये निमित्त वहाँ होता है, परंतु जीव अपने स्वयं के योग्यता से वैसी पर्याय प्रकट करता है और वही उसका सच्चा कारण है, उपादान कारण। तो मोह प्रधान शत्रु है, और उस शत्रु के नाश करने से अरिहंत यह संज्ञा प्राप्त होती है, अथवा रज अर्थात आवरण कर्मों के नाश करने से अरिहंत है। स्तुति में आता है अरि रज रहस विहीन, अरि यानी मोहनीय, रज यानी आवरण वाले कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और रहस्य की बात आगे आएगी। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूलि की तरह बाह्य और अंतरंग स्वरूप समस्त त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय स्वरूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण को रज यानी धूलि कहा है। जैसे दर्पण में सभी वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है, उस पर अगर धूल आ जाए तो धुंधला सा कुछ वहाँ स्पष्ट सा दिखेगा, तो जो उसकी रिफ्लेक्टिविटी है वहाँ कम हो जाती है। वैसे ये बोध यानी ज्ञान कैसा है? तो समस्त त्रिकाल गोचर जो अनंत अर्थ पर्याय है और व्यंजन पर्याय है वस्तुओं की, द्रव्यों को जानते हैं ना, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है, तो सभी द्रव्यों को जानने में उसके सभी पर्यायों को जानेगा, गुणों को और पर्यायों को। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय कहते हैं प्रदेशत्व गुण के पर्याय को, और बाकी अनंत गुणों की जो पर्याय उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। तो ये सभी पर्याय कभी अनादि से अनंत काल तक की सभी द्रव्यों की सभी पर्याय जानने में जो समर्थ है, ऐसा जो बोध यानी ज्ञान है और अनुभव है उसका प्रतिबंधक है, इसलिए उसको रज कहते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण को। मोह को भी रज कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता है उनमें जिम्म भाव अर्थात कार्य की मंदता देखी जाती है, उसी प्रकार मोह से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्म भाव यानी क्या? कार्य की मंदता। अर्थात उनकी स्वानुभूति में कालुष्य मंदता या कुटिलता पाई जाती है। हमने देखा था अग्नि के ऊपर भस्म आ जाए तो वो मंद हो जाता है, वैसे यहाँ जिम्म भाव ने मोह को जिम्म भाव कहा। यहाँ जिसके मोह है उसके भी मंदता पाई जाती है, कालुष्य मंदता और कुटिलता। अब शंका, यहाँ पर केवल तीनों अर्थात मोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के ही विनाश का उपदेश क्यों दिया गया है, अन्य कर्मों की बात क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शेष सभी कर्मों का विनाश इन तीन कर्मों के विनाश का अविनाभावी है। इनका विनाश होता है तो अन्य का भी वहाँ विनाश अविनाभावी होता ही है, यानी जिसके बिना वो नहीं हो उसको अविनाभाव कहते हैं। अविनाभाव संबंध यानी जहाँ एक है वहाँ दूसरा होगा ही होगा, जहाँ इनका नाश हुआ तो वहाँ अन्य कर्मों का नाश भी अवश्य होगा। जैसे हम कहते हैं ना पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो अग्नि में तो हमें स्पर्श गर्म लगता है, वर्ण दिख रहा है उसका, गंध भी कुछ ना कुछ बासित होती है, परंतु अग्नि का रस होगा कि नहीं होगा? हाँ अश्विन भाई, अग्नि में स्पर्श रस गंध वर्ण में से स्पर्श तो हमें अनुभव में आता है, गंध भी है वर्ण भी दिख रहा है, तो रस है कि नहीं है, क्यों है? हाँ तो उसमें अविनाभाव संबंध है, है ना? एक गुण का दूसरे अनंत गुणों के साथ अविनाभाव संबंध है, जहां पर एक है वहां अन्य सभी है ही है, क्योंकि द्रव्य के अनंत गुण उसको छोड़कर कभी जाएंगे ही नहीं, तो उनका आपस में अविनाभाव संबंध कहने में आता है। वैसे जहां एक कर्म का नाश है वहां पर अन्य कर्मों का नाश भी अविनाभावी है ही है। अर्थात इन तीन कर्मों के नाश हो जाने पर शेष कर्मों का नाश अवश्यम भावी है, इस प्रकार उनके नाश करने से अरिहंत होते हैं, अथवा अवश्यम भावी, डेफिनेटली अवश्य अवश्यम भावी होते हैं, होता ही है, अथवा रहस्य के अभाव से भी अरिहंत होते हैं। रहस्य अंतराय कर्म को कहते हैं, अरि रज रहस्य, अभी उसमें रहस्य लिखा था, ये स्तुति में मूल शब्द रहस्य है। अंतराय कर्म का नाश शेष तीन घातिया कर्मों के नाश का अविनाभावी है। हमने पहले सीखा था कि मोहनीय का नाश दसवें के अंत में तो हो गया, और बारहवें में किस किस का नाश होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, तीनों का अविनाभावी एक साथ हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या लिखा, अंतराय कर्म का नाश शेष तीन घातिया कर्मों के नाश का अविनाभावी है, और अंतराय कर्म के नाश होने पर अघातिया कर्म भ्रष्ट बीज के समान निःशक्त हो जाते हैं। कोई बीज है बोने से उगने की शक्ति है, अभी उसको जला दो या सेको तो उसमें से फिर वो शक्ति नष्ट हो जाती उगने की, ऐसे अंतराय कर्म के नाश से अरिहंत होते हैं, यानी अरिहंतों को चारों ही घाती कर्मों का नाश पाया जाता है। अथवा अभी अरहंत लिखा भी यहाँ अलग टाइप से लिखा था, अभी तक हम अरिहंत चार अक्षर वाला देखते थे, अब यहाँ तीन अक्षर वाला अरहंत, ह के ऊपर रफाराया, तो उसका अर्थ क्या होता है? सातिशय पूजा के योग्य होने से अरहंत होते हैं, जो पूजनीयता के कारण, पूजनीयता है ना उनमें, अरिहंत भगवान देव मनुष्य तिर्यंच सबसे वो पूजित है, तो इसलिए उनको कहते हैं वो पूज्य है, इसलिए उनको अरहंत कहते हैं, क्योंकि गर्भ जन्म दीक्षा केवल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकों में, आपको पता है ना ये पांच कल्याणक होते हैं, जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है माता के गर्भ में, उससे पहले छह महीने से ही वो इंद्रों को तो अवधि ज्ञान से पता चलता है, वो रत्नों की वर्षा वगैरह होती है, अन्य भी बहुत सारी बातें होती है, और गर्भ में आते तभी गर्भ कल्याणक की वो पूजा भी करते हैं उनकी। फिर जब जन्म होता है तब वे आते हैं देव सब, इंद्र उनको लेकर पांडुशिला पर चला जाता है और वहाँ जन्माभिषेक वगैरह करते हैं, वहाँ भी उनकी पूजा की जाती है। दीक्षा जब लेते हैं तब भी वो स्वर्ग से अवतरित होते हैं, वो लोकांतिक देव वगैरह भी आते हैं, पालकी उठा के ले जाते हैं और भगवान दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर का जीव है ना मुनि बन जाते, तो वो दीक्षा कल्याणक। जब भी केवल ज्ञान होता है तब भी उनको अवधि ज्ञान से पता चलता है और वो यहाँ आकर उनकी पूजा की करते हैं, और निर्वाण कल्याणक जब निर्वाण हो जाता है तब फिर आकर वहाँ भी निर्वाण कल्याणक की वहाँ पूजा की जाती है, भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ तभी भी उनकी वो पूजा करते हैं। इस तरह से ये तो पांच कल्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं, देव असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक अर्थात महान है, यानी पंच कल्याणकों में जो देव आकर पूजा करते हैं ऐसी पूजा किसी भी देव को किसी भी असुरों को या किसी भी मनुष्य को ऐसी पूजा प्राप्त नहीं होती, ऐसा कहना है। देखो ये पूजा है देव असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक अर्थात महान है। कोई भी चक्रवर्ती हो और अन्य लोग उसके आके स्तुति करे, पूजा करे, कुछ भी करे, तो ऐसी नहीं हो सकती जो जिनेंद्र भगवान की जाती है। किसी देव की भी ऐसी पूजा नहीं होगी कि जिनेंद्र ये अरियंतों की होती है और असुर कुमार लिए हैं उनमें भी ऐसा ही समझना। इसलिए इन अतिशयों के योग्य होने से अरहंत होते हैं। अब आगे 23 आंकड़ा कहाँ लाला है? नीचे कहाँ लिखा है? हाँ अगले पेज पर। हाँ तो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर हम वो 23 का शुरू हो जाएगा। 23 श्लोक का जो अर्थ है ना वो नीचे के पैराग्राफ में, पहले ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत विरति, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग और क्षायिक उपभोग आदि आदि में और भी अन्य अनेक समझ लेना। प्रकट हुए अनंत गुण स्वरूप होने से जिन्होंने यहीं पर सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, अरिहंत भगवान घाती अघाती दोनों ही कर्मों का नाश करते हैं, तो सिद्ध पद यहीं पर प्राप्त हो जाता है और फिर ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में चले जाते। स्फटिक मणि के पर्वत के मध्य से निकलते हुए सूर्यबिंब के समान जो देदीप्यमान हो रहे हैं, अरिहंतों का तो परम औदारिक शरीर होता है, स्फटिक समान होता है, और यह तो कोटि सूर्यों के समान वो तेजस्वी होता है, और इतना तेजस्वी होते हुए भी जैसे ये 12 बजे आप ऊपर देखो तो देख नहीं सकते सूर्य की तरफ, तो ऐसे तकलीफ वाला नहीं होता है। तो यहाँ उपमा कैसे दी है, जैसे स्फटिक के पर्वत के पीछे से या स्फटिक मणि के पर्वत के मध्य से सूर्य निकलता हो तो उसकी प्रभा कैसी द्विगुणित अनेक गुणित हो जाएगी ना, क्योंकि स्फटिक में से भी वो रिफ्लेक्शन आता है सब पूरा, तो वो कैसा दिखेगा। अकेले सूर्य का वहाँ प्रभाव नहीं, वो स्फटिक में से भी वो सब कांति आती है। तो ऐसे अरिहंतों का जो शरीर है वो अत्यंत तेजस्वी ऐसा स्फटिक मणि के समान होता है, और अपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को प्राप्त कर लिया है, व्याप्त कर लिया है, क्या कहते हैं, केवल ज्ञान कितना बड़ा है, कितना फैला है, लोकाकाश में फैला है कि नहीं केवल ज्ञान। हाँ तो आत्मा के गुण कितने बड़े होते हैं, अभी इतना जीव द्रव्य है कोई, या पुद्गल को ले लेते हैं, ये सोना है तो सोने का पीलाश कहाँ पर है, हाथ में भी थोड़ा फैलेगा कि नहीं, नहीं फैलेगा, बराबर। इसका स्पर्श गुण, रस गुण, वर्ण गुण जो कुछ है वो कितने एरिया में है, जितना द्रव्य है उतना ही उसका गुण है, क्योंकि गुण हम उसको ही कहते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहते हैं और उसकी सभी अवस्थाओं में रहते हैं, उसकी जो संपूर्ण जो उसका क्षेत्र है उसके बाहर कभी भी नहीं जाता। तो भगवान का केवल ज्ञान अपना स्वद्रव्य का क्षेत्र छोड़कर लोकालोक में जाएगा कि नहीं जाएगा, हा? अपने में रहकर लोकालोक को जानता है, जानने की अपेक्षा उनको सर्वगत कहते हैं, पर क्या केवल ज्ञान फैलता है, जैसे हम कहते हैं सूर्य की किरणें फैली, तो क्या केवल ज्ञान फैलता है, उसका निश्चय तो अभी करना पड़ेगा ना हमें कि जीव तो यहाँ पर रहा और उसका ज्ञान सब जगह घूम कर आया वापस यहाँ, ऐसा नहीं होगा। ख्याल आता है मेरा प्रश्न पूछने का, यानी प्रयोजन क्या है कि जितने बड़े वो भगवान अभी आदिनाथ भगवान 500 धनुष की ऊंचाई है उनकी, तो उनका केवल ज्ञान उनके जो शरीर प्रमाण जो है जहाँ आत्मा स्थित है उस आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में उनका ज्ञान गुण है, बराबर। अब महावीर भगवान तो 7 हाथ के, तो उनका ज्ञान गुण कितना बड़ा होगा उस शरीर प्रमाण। तो संकोच या विस्तार कम या ज्यादा होने से केवल ज्ञान की शक्ति कम बढ़ नहीं होती उसमें। केवल ज्ञान की शक्ति तो परिपूर्ण है, अनंत ज्ञान दोनों ही तीर्थंकरों को है। शरीर की अवगाहना कम हुई इसलिए ज्ञान में कुछ कटौती आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दोनों को ही ज्ञान को हम सर्वगत क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लोक और अलोक को जानते हैं, परंतु जानने के लिए उनको अपने आत्मा को छोड़कर बाहर जा सकते ही नहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ज्ञान की क्या मानता है, अपने में ही रहकर जानता है। अब हम गुलाब जाम खाते हैं तो गुलाब जाम अपने अंदर जाता है तभी जानते ना, आत्मा के अंदर जाता होगा ना, आत्मा आत्मा में रहकर उसका जो गुण है उसको जान लेते। सफर प्रकाशक है आत्मा, तो उसमें पर पदार्थों को जानते समय उस पदार्थों में घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आंखों के दृष्टांत से सीधा है। अभी आंखों से जो जो कुछ हम जान रहे, क्या हमारी आंखें वहां तक पहुंचती है? आंखें तो यहीं पर है और फिर भी सभी देख सकती है। वैसे ज्ञान तो जहां पर है और वो पूरे लोकालोक को जान लेता है। तो क्या कहते हैं यहां
इन शब्द हम इसी बात समझे कि निश्चय से तो आत्मा का ज्ञान जो है वह असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन वो पूरे लोकालोक को जानता है इसलिए उसको लोक व्याप्त कहा है, पूरे विश्व में व्याप्त है। तो ऐसा कहना यह व्यवहार नय का कथन है। और निश्चय नय का कथन क्या है? निश्चय ने कहता है कि वो आत्म प्रमाण है यानी असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा कभी भी मत लेना कि वो जो लोकालोक को जानता है वह व्यवहार नहीं है। लोकालोक को जानता है ऐसा कहना व्यवहार है। वो जानता तो निश्चय से लोकालोक को ही और स्व को ही, उसमें भी भेद किया है प्रवचन सार में कि तद्रूप परिणमन नहीं करता है, तन्मय होकर नहीं जानता, इसलिए उसको व्यवहार से कहा है। ये भी बात ध्यान रखना। लेकिन जानता तो सबको है, जानने में कोई निश्चय व्यवहार नहीं, वो तो स्व पर को जाने ऐसा उसका स्वभाव ही है। ये कथन पद्धति में निश्चय और व्यवहार लगेगा। हाँ
वो है ना, नियम सार में बात अभी चल रही है,
वो ऐसा है, वो व्यवहार से कहा गया है, वो भी जुदा मतलब अपेक्षा, जुदी अपेक्षा है।
अनंत विरति, हाँ दस है और उसमें आदि कहा यानी और भी अनंत। हाँ ये गिने थे हमने, वो दस है ना, हम तो ऐसे आठ गिनते हैं। हाँ नहीं, निक्षायिक लब्धि तो नौ गिनते हैं, सिद्धों के गुण अगर कहेंगे तो आठ गिनेंगे हम। हाँ उसमें तो अव्यवाद वगैरह वो भी बातें आती हैं, परंतु क्षायिक नौ लब्धि हम कहते हैं, परंतु यहाँ तो जितने भी गुण है उसमें क्षायिक लगा लेना आप। हाँ विरति चारित्र गुण की अपेक्षा, वो अनंत सुख में ही गर्वित हो जाता है। चारित्र गुण की जो है ना पूर्ण निर्मल अवस्था, क्षायिक चारित्र भी है ना वहाँ, तो वो अनंत सुख में वो गर्वित हो जाता है। और आगे आगे आदि लगाया यानी और भी कुछ अनेक। हाँ देखो क्या है, इसको फिर पढ़ेंगे। शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, व्याप्त करना इस कारण उनको विष्णु भी कहते हैं। ये अन्यमति की जो विष्णु कल्पना है उसकी बात नहीं है। विष्णु यानी व्यापने वाला, तो वो कहाँ पर व्याप्त है और कैसे व्याप्त है? आत्म प्रदेशों के द्वारा व्याप्त नहीं है, जैसे अन्यमति कहते हैं कि हमारा ईश्वर चराचर में व्याप्त है, यानी वो ऐसे समझते कि ईश्वर ही सब जगह है, इसके अंदर भी ईश्वर है ऐसा कहेंगे, वैसी ईश्वरता की बात नहीं है, ख्याल है ना। तो ये तो सबको जानते हैं, तो ज्ञान उनका सबको जानता है, इसलिए ज्ञान सब में फैला है ऐसा कहने में आता है। मगर ज्ञान कहीं फैला नहीं है, ज्ञान तो अपने में रहकर ही सभी को जानता है। तो क्या कहेंगे कि ज्ञान सब जगह फैला ऐसा भी कहेंगे, या क्या कहेंगे सभी लोकालोक के पदार्थ ज्ञान में घुस गए ऐसा भी कहेंगे। ना पदार्थ ज्ञान में जाते हैं ना ज्ञान पदार्थों में जाता है, पदार्थ अपने में रहता है और ज्ञान अपने में रहता है, क्योंकि कोई भी अपना स्वचतुष्टय छोड़कर दूसरे चतुष्टय में प्रवेश ही नहीं कर सकता है, फिर भी ज्ञान सबको जानता है, इसलिए कहेंगे ज्ञान सब में चला गया और सभी वस्तुएं ज्ञान जानने में आती है, तो ऐसे कहेंगे वह वस्तु ज्ञान में चली गई। ये शून्य ने अशून्य ने में आती है ना बात, देखो इसको पढ़ेंगे फिर, कि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, यानी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को जान लिया है, अपने ज्ञान में ही संपूर्ण प्रमेय रहने के कारण, प्रमेय यानी ज्ञेय, ज्ञान में सभी ज्ञेय झलकने के कारण यानी प्रतिभासित होने के कारण जो विश्व रूपता को प्राप्त हो गए, क्या कहते हैं, पहले क्या कहा कि ज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया है, यानी उसने सबको कवर कर लिया जाना, और अब क्या कहते हैं, ज्ञान स्वयं विश्व रूपता को प्राप्त हो गया, विश्व रूपता यानी अनेकता को प्राप्त हुआ, विश्व का रूप ही धारण किया, यानी क्या पूरा लोकालोक यानी पूरा जो विश्व है वो ज्ञान में झलका, तो ज्ञान विश्व रूप हो गया। दो अपेक्षा बताई, ज्ञान ने सबको जाना तो कहेंगे ज्ञान ही सब जगह फैल गया, और दूसरी क्या कहते हैं, सभी चीजें ज्ञान में आ गई यानी ज्ञान विश्व रूप हो गया। दो बातें बताई ना, ज्ञान सर्वगत हुए यानी सभी पदार्थों में व्याप्त हुआ, या दूसरी क्या बताई, सभी पदार्थ ज्ञान में आ गए यानी ज्ञान ही विश्व रूप हो गया, अनेक रूप हो गया।
ये अन्य मतियों की मान्यता है ना, वो कृष्ण को मुंह खुलवाने लगाती उसकी माता, तो उसके मुख में विश्व दर्शन होता है, तो इसी से बाहर निकली हुई उल्टी उल्टी बात है। ज्ञान को विश्व रूपता प्राप्त हुई कहा ना, तो वो बात यानी पूरा लोकालोक उसमें झलक रहा है ज्ञान में, तो उसके मुख में वो दिखता है।
अब क्या कहते हैं, संपूर्ण आमय, आमय का अर्थ होता है रोग, आमय निरामय कहते ना, निरामय ने रोग रही, निरोग या रोग रहित, तो संपूर्ण आमय अर्थात रोगों से दूर हो जाने के कारण जो निरामय है, देखो अरिहंतों को कहा, यानी अरिहंत अवस्था में कोई रोग है या उपद्रव है या अन्य कोई क्षुधा है तृषा है ऐसे वो मानना वो गलत है, तो वो निरामय है। संपूर्ण पाप रूपी अंजन के समूह के नष्ट हो जाने से जो निरंजन है, निरंजन नि शब्द नहीं आता है वो निकल जाता है तो उसको निर लगाते नहीं, और दोषों की कलाएं अर्थात संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण जो निष्कल है, निकल नहीं कहा, यहाँ दो शब्द आते हैं ना, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, वहां कल का अर्थ शरीर है, तो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा है, तो कौन से हो गए सकल, तेरहवे वाले हो गए कि चौदहवे वाले हो गए, हाँ तेरहवे गुणस्थान वाले अरिहंत तो सकल है कि चौदहवे गुणस्थान वाले है, दोनों हैं। फिर निकल किसको कहेंगे, सिद्धों को, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, परंतु यहाँ निष्कल, यहाँ कल का अर्थ अलग किया है, यहाँ दोषों के लिए कल शब्द आता है और दोषों से रहित हो गए हैं तो उसके लिए वहां निष्कल शब्द आया। किस अर्थ में वो शब्द आता है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कौन सी अपेक्षा से किस अर्थ में वो शब्द आता है उसको अगर हम बराबर ध्यान में लेते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो निष्कल है। ऐसे उन अरहंतों को नमस्कार हो, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अरिहंत कहते ही या अरहंत कहते ही इतनी बातें उसमें आ गए। अब ऊपर जो गाथाएं लिखी है उसको पढ़कर फिर उसका अर्थ करेंगे हम। हाँ 23, 24 और 25 एक साथ अभी तीनों का अर्थ कर दिया। अब इसमें क्या देखना है, हम इन तीनों में क्या बताएं, जैसे अन्य जन महादेव मानते हैं ना, महादेव ऐसे देव की कल्पना करके कैसा है वो, तो उसके तीन आंखें हैं, हाथ में त्रिशूल है, वो तो नग्न रहता है, खाली कुछ ऐसा व्याघ्रजन वगैरह पहनता है, तो इस तरह से जो कल्पना अन्य मति की है तो वे ही नाम यानी वैसे त्रिशूल तीन आंखें ऐसे लेकर जिनेंद्र भगवान का वर्णन किया है, तो उनकी तीन आंखें कौन सी है, उनका त्रिशूल कौन सा है, ऐसे अभी कल्पना इसमें आती है। अब इसको हम पढ़ेंगे। निदत्त मोह तरुणो
విత్తిన్నానసాయ రుత్తిన్నా నిహయణీయ విఘవగ్గా బహుబాహ వినగ్గయాయలా దలియమయణప్పవావా తికాల విసయేహి తీహినయణేహి డిఠసయలఠసారా సుదద్ద తీవ్రామునివైనో తిరయణతి శూలదారియ మోహన్ధాసుర కబంధ బిందహరా సిద్ధసయలప్పరువా అరహంతా దుర్నయకయంతా. అబ్ ఇస్కా అర్థ నీచే పడేంగే. ఉపర్ లిఖా హై నిద్దద్ద మోహ తరుణో, తరు యానీ వృక్ష, మోహ రూపీ తరు. క్యా కహతే హై, జిన్హోనే మోహ రూపీ వృక్ష కో జిలా దియా హై. ఔర్ క్యా హై, విత్తిన్నా అన్నాన సాయరు తిన్నా, యానీ జో విస్తీర్ణ అజ్ఞాన రూపీ సముద్ర సే ఉత్తీర్ణ హో గయే. కైసా హై అజ్ఞాన రూపీ సముద్ర? విస్తీర్ణ హై, మహాసాగర హై. और उसको तिर गए ने वो अज्ञान रहित तो हो गए. निहय निय विघवग्गा, जिन्होंने अपने विघ्नों के समूह को नष्ट कर दिया है. बहु बाह विणिक गया अयला, जो अनेक प्रकार की बाधाओं से रहित है और जो अचल है. अयल यानी अचल. दय దలియ మయణప్పయావా, తికాల విషయేహి తీహి నయనేహి. తీహి నయనే తీన్ నయన కౌన్సే ఉన్కే ఉస్కీ బాత్ అభి కరే కి జిన్హోనే తీనో కాలోం కో విషయ కర్నే రూప్ తీన్ నేత్రోన్సే కామదేవ్ కే ప్రతాప్ కో దళిత్ కర్ దియా హై. దలియ మయణప్పయావా యానీ జైసే శంకర్ కి బాత్ ఆతీ నా, మహాదేవ్ నే వో కామదేవ్ కో मार दिया था, ऐसी कथा उनमें बहुत चलती है. तो उसमें से एक एक जो उनकी मान्यता है उस पर उन्होंने जिनेंद्र भगवान के वहाँ उसका रूपक लेके यहाँ वही शब्दों में जिनेंद्र भगवान कैसे उसको समझाया. तो जैसे वहाँ तीन नेत्र है, परंतु वो तो ऐसे कोई कहते कि वो तीसरा नेत्र खोलते तो सबको भस्म कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें. वो तो सब कल्पना ही कपोल कल्पित चलती है. परंतु इनके तीन नेत्र कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को देखने वाले तीन आंखें हैं उनके. ऐसी यहाँ कल्पना कर दी. और कामदेव के प्रताप को उन्होंने दलित कर दिया है, यानी काम भाव जो है पंचेंद्रियों के जो है उसमें उसको उन्होंने जीत लिया है. अब आगे ऊपर क्या आता है? दिट्ठ सयलठ सारा, यानी जिन्होंने सकल पदार्थों के सार को देख लिया है. सभी पदार्थों का द्रव्यगुण पर्याय स्वरूप जो कुछ है, तीनों काल का, तीनों काल के पर्याय वगैरह वो सब जान लिए. सुदद्ध तीवरा मुनि वैणो त्रिपुर का, तो जिन्होंने त्रिपुर अर्थात मोह राग और द्वेष को अच्छी तरह से भस्म कर दिया है. वो त्रिपुरारी कहते हैं ना ये शंकर को, त्रिपुर का नाश कर दिया था, भस्म कर दिया था. तो यहाँ ये त्रिपुर कौन से? मोह राग द्वेष को यहाँ त्रिपुर का. जो मुनिव्रति अर्थात दिगंबर अथवा मुनियों के पति अर्थात ईश्वर है, मुनिव वयो. अब आगे तीरयण तिसुल दारिय, तीरयण तिसुल तीन रत्न रूप त्रिशूल है. जैसे उसके हाथ में त्रिशूल है और उसमें वो उसको किसका वो अंधकासुर या कोई किसी राक्षस का नाश कर दिया था उसने त्रिशूल के द्वारा, वैसे यहाँ क्या कहते हैं? इनके पास कौन सा त्रिशूल है? रत्नत्रय रूप. तो जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीन रत्न रूपी त्रिशूल के द्वारा किसका नाश किया? मोह रूपी अंधकार रूप असुर के कबंध जड़ को विदारित कर दिया है. क्या कहते हैं? जैसे शंकर ने वो अंधकासुर जो कोई था उसको कोई ऐसे किसी ने वर दिया था कि तेरा कोई मार नहीं सकता वगैरह वगैरह, तो उसका कबंध यानी शिर, हेडलेस बॉडी जिसको कहते हैं, कि मस्तक रहित शरीर ऐसे कर दिया था. और बाद में उसके ऐसी स्टोरी कुछ आती है तो उसका नाश कर दिया था. वैसे इन्होंने क्या किया? मोह रूपी अंधकार सुर रूप अंधकार रूप असुर के कबंध जड़ को विदारित कर लिया है, यानी मोह का नाश कर लिया है। ये सब रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो जैसे वो महादेव की जो जो बातें हो गई उसमें अपनी जिनेन्द्र भगवान को उसी ढांचे पर समझा रहे, जिन्होंने संपूर्ण आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है। सिद्ध सैलप पर हुआ है ना, संपूर्ण आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है। और कैसे है, दुर्नय कयंता, जिन्होंने दुर्नय का अंत कर लिया है, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं वे अरिहंता। ये ऐसे अरिहंतों का यहाँ वर्णन आ गया, उसका विशेषार्थ। शैव मत में महादेव का अपने तीन नेत्रों से कामदेव का नाश करने वाला, सकल पदार्थों के सार को जानने वाला, त्रिपुर का ध्वंस करने वाला, मुनिव्रति अर्थात दिगंबर त्रिशूल को धारण करने वाला और अंधकासुर के कबंध वृंद का हरण करने वाला माना है। महादेव के इन विशेषणों को लक्ष्य में रखकर उक्त तीन गाथाओं में से अंत की दो गाथाओं की रचना हुई है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि अरिहंत परमेष्ठी ही सच्चे महादेव है। महादेव ने देवों के भी देव, देवाधिदेव कहते ना अरिहंतों को, यानी अन्य जो ये शंकर या महादेव की जो है वो कपोल कल्पना है, ऐसा कोई भगवान है ही नहीं विद्यमान। ऐसी बहुत बातें चलती है अज्ञानता के कारण, ऐसी रचनाएं होती है और लोग भी उसको सच मान लेते हैं, चलता है ऐसा। तो अब नमो सिद्धानम की बात आ गई, अर्थात सिद्धों को नमस्कार हो, जो निष्ठित अर्थात पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित है। निश्चित हो गए ना क्या, पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में स्थित है, कृतकृत्य है, यानी करने जैसा जिन्होंने कर लिया है उनको कहते कृतकृत्य। करने लायक सब कार्य उनका हो चुका है, और जिन्होंने अपने साध्य को सिद्ध कर लिया है और जिनके ज्ञानावरणादि आठ कर्म नष्ट हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध और अरिहंतों में क्या भेद है, ये मूल प्रश्न आ गया। तो हम देखेंगे क्या क्या भेद है, हमको कितने कितने मालूम है, थोड़े गिनाएंगे ना। आपको कोई मालूम है? हाँ हाँ, अरिहंतों के चार कर्मों का नाश हो चुका है और सिद्धों के आठ हो ही, बराबर। हाँ एक कर्मों की बात हो अब, और सिद्ध सिद्ध शिला पर और अरिहंत, तो अरिहंतों की एरिया बड़ी हो गई और सिद्धों की छोटी हो गई। मध्य लोग पूरा ही है, असंख्यात द्वीप समूह समुद्रों में है क्या अरिहंत? हाँ मनुष्य लोक में, मनुष्य लोग ढाई द्वीप है और वहीं पर अरिहंत होते हैं। अब ये सामान्य अरिहंतों की अपेक्षा है, तीर्थंकरों की बात करेंगे तो अभी तो विदेह में और कर्म भूमि में ही वो होंगे, परंतु कभी कभी क्या है मुनियों को उठाकर देव अन्यत्र ले जाते हैं, समुद्रों में भी फेंक देते हैं या कहीं पर भी, तो उस अपेक्षा वहां से भी वो सिद्धालय पहुंच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, श्रेणी वगैरह मानकर वैसे ही एटमॉस्फेयर में से ऊपर के ऊपर चले जाते हैं। तो इसलिए ढाई द्वीप में ऐसी कोई भी जगह बाकी नहीं कि जहां से कोई जीव सिद्ध न हुआ हो, अनंत अनंत सिद्ध हो गए हर एक जगह से। उस अपेक्षा उपसर्ग होता है, कोई देव उठा के पटक देते हैं और वहीं पर उनको मोक्ष मिल जाता है। इस तरह से वहां से भी कोई मुक्त होते, परंतु एरिया कितनी है, मनुष्य क्षेत्र से बाहर तो नहीं जाएंगे, वो तो उनकी बात हुई जो उपसर्ग से जाते उनकी। और जहां कोई मुनि अवस्था भी केवल ज्ञान हो गया, तो अभी केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान होते ही कोई मोक्ष नहीं चला जाता इमीडिएट, जितनी आयु शेष है तभी तो 13वां 14वां गुणस्थान चलेगा उनका, तो वो कहां रहते हैं, तो ये मनुष्य क्षेत्र में रहे कर्म भूमि वाले। और सिद्ध कहां रहते हैं, वो अंतिम वातमले में, अंतिम वातमले में, सिद्धशिला में नहीं कहना, वो तो सिद्धशिला वो तो ये सामान्य कथना था, सिद्धशिला में कोई भी सिद्ध भगवान नहीं है क्योंकि सिद्धशिला जो है वो आठवीं पृथ्वी, उसके अंदर वो सिद्धशिला है। मान लेते ये आठवीं पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसे H2H और उसके बीचों बीच ये ऐसी सिद्ध शिला होगी, इसको भी लंबी करो लोकाकाश के एंड तक पहुंचा दो। और सिद्ध शिला कितनी बड़ी है? ऐसे 8 योजन, बीच में चौड़ी, बीच में, और वो टेपरिंग दोनों जगह ऐसी टेपरिंग हो जाती है। वो कितनी? 45 लाख योजन तक टेपरिंग होती जाएगी। उसका प्रोपोर्शन कर निकालो आप तो बिल्कुल थोड़ा कर्वेचर होगा ऐसे, या हम ऐसे चांद निकालते ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके ऊपर उस उतने ही क्षेत्र में उसके ऊपर जो 3 वात वलय है उसमें जो अंतिम वात वलय है उसमें सिद्ध भगवान विराजमान है, ख्याल है? परंतु वो सिद्ध शिला उनके नीचे उतनी शिला आती है इसलिए उसका नाम है सिद्ध शिला। और वो ऐसे सफेद रंग की होती है, अलग से उसमें है, पृथ्वी में अलग सी वो शिला रहती है इसलिए उसको सिद्ध शिला कहते हैं। सिद्ध उसमें विराजमान, सिद्ध उसके ऊपर, ये जो ऊपर 3 वात वलय है उसके अंतिम वात वलय में, यानी सिर सबका एक समान, और कोई पद्मासन है कोई खड़गासन है वगैरह ऐसे सबके एक लेवल पर, सिर एक लेवल पर आता है। अब उसमें कोई 500 धनुष वाला, कोई 7 हाथ वाला होगा, कोई 3.5 हाथ वाला होगा, जो कुछ है। तो ये ऊपर विराजमान है सभी। और क्या है उन? हाँ, गुणस्थानातीत है वे। हाँ, और कुछ गति कौन सी? हाँ, सकल और निकल। अरिहंत भगवान सकल है और वे निकल है। गति कौन सी है अरिहंतों की? कौन सी गति है? मनुष्य गति है, और वे तो सिद्ध गति है उनकी, पंचम गति कहेंगे, सिद्ध गति कहेंगे उसके। ये संसारी है, वे मुक्त है। ऐसे जितनी उसमें अपेक्षा लगा वो हम उस पर विचार करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें ख्याल में आएगी। ये अरिहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं, सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि इनको मन है, वचन है, का ये वचन और कायन की तो क्रिया चल रही है। मन तो वो द्रव्यमन पड़ा है, मन का कार्य नहीं चल रहा है, परंतु यहाँ वचन का कार्य तो होता है, उनके द्वारा हमें उपदेश की प्राप्ति होती है। और हाँ, क्या कह योग, हाँ योग, ये 13वें वाले को योग है और 14वें वाले को और सिद्धों को अयोगी है। वो अभी मार्गणा की अपेक्षा सभी लगाओ फिर अब देखेंगे आगे सिद्ध और अनंतों में क्या भेद है। समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट करने वाले सिद्ध होते हैं और 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहंत होते हैं, यही उन दोनों में भेद है। मुख्य में मुख्य तो ये भेद है। शंका, 4 घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर अरिहंतों के आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं, इसलिए सिद्ध और अरिहंत परमेष्ठी में गुणकृत भेद नहीं हो सकता है। यानी ऐसी शंका है कि उनमें गुण का कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि मूल जो तो घाती कर्म जो आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं वे तो नष्ट हो चुके हैं, तो गुणों की अपेक्षा दोनों को समान मानना ठीक होगा क्या नहीं होगा, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि अरिहंतों के अघाती कर्मों का उदय और सत्व दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों में भेद है। अघाती कर्मों के उदय स्वरूप वहाँ कुछ न कुछ उनका कार्य भी चल रहा है, सत्ता में भी है और उसका उदय भी है और उसका फल भी वहाँ चल रहा है, तो इसलिए सिद्धों में और अरिहंतों में समानता मानना योग्य नहीं है। शंका, वे अघातिया कर्म शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा अधजले से हो जाने के कारण, यानी वो जैसे नहीं के बराबर हो जाने के कारण, उदय और सत्व रूप से विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। क्या कहते हैं? अघाती कर्म तो है, कौन से? वेदनीय आयु नाम गोत्र है वहां पर, तो वो अधजले से है क्योंकि मोनीय और अन्य कर्मों का, घाती कर्मों का नाश हो चुका है, तो यहाँ अघाती कर्म कुछ कार्य नहीं करते होंगे, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। अधजला यानी आधे जले, आधे जले हुए, अधजला कहते हैं उसका।
देखो रस्सी जो होती है, इतना बड़ा जाड़ा रस्सा, वो जल जाए तो बांधने के लिए काम में नहीं आता है, उठाते उठाते वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक अघाती कर्म जो है वो अधजले हो गए।
तो उनका प्रश्न ऐसा है कि इसलिए उसका कुछ फल नहीं मिलता होगा। प्रश्नकार का प्रश्न में क्या है वो बराबर समझना। तो समाधान जो हम पढ़ते हैं उसमें से हमें आनंद आता है उसका पढ़कर, है ना, क्योंकि शंका भी आचार्यों ने खुद उठाई है और वो शंका उठाने के लिए भी शास्त्र का जानकार होना आवश्यक है। तो क्या कहते हैं समाधान के, ऐसा भी नहीं है क्योंकि शरीर के पतन का अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता है। शरीर का पतन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ कर्म का कार्य चल रहा है। यदि अघाती कर्मों का कार्य का अभाव ही मानेंगे तो शरीर भी छूट जाना चाहिए था, केवल ज्ञान होते ही शरीर भी छूटना चाहिए था, परंतु वो नहीं छूटा दिखता है। क्या कहते, शरीर के पतन का अभाव, पतन का अभाव है ना, शरीर का वहाँ रहना अन्यथा सिद्ध नहीं होता, अन्यथा है ने ये अघाती के कर्मों के बिना सिद्ध नहीं होता है। अभी नाम कर्म भी है, आयु भी है, जो कुछ है, तो शरीर का पतन नहीं हुआ है वो क्या सिद्ध करता है कि वहाँ कोई ना कोई कर्म का कार्य चल रहा है, यानी निमित्त रूप से वहाँ कोई कर्म वहाँ है। इसलिए अरिहंतों के आयु आदि शेष कर्मों के उदय और सत्व की सिद्धि हो जाती है। आयु आदि सब लिया उसमें, नाम कर्म जो कुछ गोत्र कर्म सब लेना उसमें। अर्थात यदि आयु आदि कर्म अपने कार्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ माने जाए तो शरीर का पतन हो जाना चाहिए। ये ख्याल में आए, वो दलील क्या है, शरीर विद्यमान है तो वो क्या सूचित करता है कि निमित्त रूप से वहाँ कोई ना कोई कर्म कार्य कर रहा है, क्योंकि वे तो बिना आहार जल के वहाँ 13वें गुणस्थान में है। तो हमने देखा है अधिक से अधिक किसी की आयु कितनी होती है, किसी बालक को 8वें साल में केवल ज्ञान हो जाए, गर्भ सहित 8 साल और कुछ अंतर्मुहूर्त के पश्चात वो केवल ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है जीव में। तो ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई है तो उसने इतने अल्प आयु में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और आयु होगी उसकी मान लो 1 करोड़ पूर्व, तो 1 करोड़ पूर्व में ये कुछ 8 साल माइनस कर दो तो इतनी उनकी 13वें गुणस्थान की आयु होगी, यानी काल होगा। अंत का एक अंतर्मुहूर्त 14वें के लिए रख दो, वो बिल्कुल छोटा अंतर्मुहूर्त है, तो इतनी बड़ी आयु वो 13वें में है। तो वहाँ ना कोई आहार का ग्रहण है ना अन्य कुछ, फिर भी वहाँ शरीर की स्थिति चल रही है, यानी वो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण करना और छोड़ना वो भी चल रहा है वहाँ। तो वहाँ निमित्त रूप से कोई कर्म वहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्य दिख रहा है ना इतने लंबे काल तक, तो वहाँ निमित्त रूप से ये आयु कर्म नाम कर्म आदि वहाँ है। देखो आयु आदि कर्म अपने कार्य में असमर्थ माने जाए तो शरीर का पतन हो जाना चाहिए, परंतु शरीर का पतन तो होता नहीं है क्योंकि वो तो परम औदारिक शरीर सहित विराजमान है। इसलिए आयु आदि शेष कर्मों का कार्य सिद्ध है, या अन्य कर्म अपना कार्य कर रहे हैं और उसका वह फल भी चल रहा है। शंका, उन कर्मों का कार्य तो 84 लाख योनि रूप जन्म जरा और मरण से युक्त संसार है। ये इन कर्मों का कार्य क्या है, वो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण आदि। वह अघातिया कर्मों के रहने पर भी अरिहंत परमेष्ठी के नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न चल रहा है अभी। क्या कहते हैं, ये जो 84 लाख योनियों में जन्म मरण करके भटकना, ऐसा जो कर्म का कार्य है, ऐसा कार्य तो अरिहंतों में नहीं पाया जाता। उनमें तो अभी मरण भी नहीं है और फिर जरा भी नहीं आती है और फिर जन्म भी वे धारण नहीं करने वाले, तो ये जन्म जरा मरण आदि जो कार्य है वो अरिहंतों के नहीं पाए जाते। तथा अघातिया कर्म आत्मा के गुणों के घात करने में असमर्थ भी है, इसलिए अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी में गुणकृत भेद नहीं बनता। ये वही फिर दोबारा अन्य पद्धति से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु आदि जो है वो आघाती कर्मों का अन्य जीवों में जो कार्य देखने में आता है वो अरिहंतों में नहीं देखने में आता, एक बात। और दूसरा कि आघाती कर्म है वो आत्मा के गुणों का घात कर्म में असमर्थ है, जैसे घातिया कर्म ज्ञाना ज्ञान दर्शन आदि में निमित्त होते ना उनका घात करने में, वैसे यहाँ नहीं पाया जाता है। इसलिए अरिहंत और सिद्धों को समान मानने में क्या हर्जा है, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। अब उसका समाधान, ऐसा नहीं है क्योंकि जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबंधक आयु कर्म का उदय और सुख गुण का प्रतिबंधक वेदनीय कर्म का उदय अरहंतों के पाया जाता है। अब यहाँ जो ऊर्ध्वगमन और ये जो सुख गुण का प्रतिबंधक कहा, ऐसा नहीं माना कि सुख गुण का प्रतिबंधक है तो यहाँ दुख है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ सुख से वो अव्याबाध सुख मान लेना, क्योंकि अरिहंतों के तो अनंत सुख ही है, परंतु वहाँ वेदनीय कर्म विद्यमान है, उसका उदय भी है, और इसलिए जो सिद्धों का जो अनंत अव्याबाध सुख है वो वहाँ नहीं है, इसलिए सुख का प्रतिबंधक कहा। कर्म का उदय विद्यमान है ये बताया जाता है, तो ये जो अव्याबाधत्व जो गुण है आत्मा का वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। और ये बातें नीचे आएगी, ऊर्ध्वगमन में भी जो अवगाहनत्व जो गुण है, सिद्धों में ये गुण प्रकट हो जाते हैं ना, चार अघाती कर्मों के नाश से कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं, वेदने के अभाव में अव्याबाधत्व प्रकट हो जाता, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र के अभाव में अगुर लघुत्व, ये गुण प्रकट हो जाते हैं। तो वे अभी अरिहंतों के प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिए सिद्धों में और अरिहंतों में भेद है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। तो उसको उन्होंने ऊर्ध्वगमन और सुख का प्रतिबंधक ऐसा कहा, यहाँ ख्याल है ना, इसकी चर्चा और नीचे की है, उन्होंने ही की है विशेषार्थ में। क्या कहते हैं, शंका क्या है, ये समाधान अभी हमने पढ़ लिया कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबंधक आयु कर्म का उदय है, और सुख गुण का प्रतिबंधक वेदनीय कर्म का उदय है। अरिहंतों के तो चारों ही आघाती कर्मों का उदय पाया जाता है, वेदनीय आयु नाम गोत्र सबका उदय है। उस पर शंकाकार फिर शंका पूछता है, ऊर्ध्वगमन आत्मा का गुण नहीं है क्योंकि उसके आत्मा का गुण होने पर उसके अभाव में आत्मा का भी अभाव प्राप्त होता है, इसी कारण सुख भी आत्मा का गुण नहीं है। दूसरे, ये सब शंका चल रही है, वेदनीय कर्म का उदय केवली में दुख को भी उत्पन्न नहीं करता है, वह साता का उदय हो या असाता का हो, केवली को असाता का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता, उदय है कि नहीं है, हाँ उदय है, वो कितना हीन है उसका अनुभव कितना कम है उसकी बात नहीं है, उदय पाया जाता है असाता का भी और साता के भी, उनको तो वहाँ तो साता रूप ही सब चल रहा है, क्योंकि उदय है वो अनंत गुना हीन 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 होकर अभी नहीं के बराबर हुआ है, ख्याल है ना, तो फिर भी वहाँ उदय पाया जाता है, परंतु उनमें दुख नहीं है। हाँ, वो वेदनीय क्या करता है, वो अव्याबाध सुख जो है,
देखो अरहंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्राप्त है, तो वे तो अनंत चतुष्टय में अनंत सुख से युक्त है, लेकिन अभी भी वहाँ वेदनी कर्म है, वो कुछ तकलीफ नहीं देते, फिर भी सिद्धों को वो नहीं है, इसलिए सिद्धों को अव्याबाध यानी कोई भी बाधा नहीं है ऐसा सुख, इस अपेक्षा से वेदनीय सुख का प्रतिबंधक कहा गया, ख्याल में, यानी वैसे अरहंत का अनंत सुख और सिद्धों का अनंत सुख इसमें कतई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ अघाती कर्म की विद्यमानता है इसलिए उसको प्रतिबंधक कहा गया, और सिद्धों को वेदनीय कर्म है नहीं तो उनका सुख कैसा है, अव्याबाध सुख है।
जैसे हम कहते हैं नवे गुण स्थान में तक वो वेद है, हमने पढ़ा था पहले, तो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो है वो तो पांचवें गुण स्थान में ही ली जाती है, उसके आगे तो वैसा कोई भाव परिणाम भी नहीं है और वैसी कोई क्रिया तो है ही नहीं है। फिर भी कर्मों का सद्भाव जहाँ तक है वहाँ तक क्या कहेंगे उस जीव को, वो वेद है वहाँ, सवेद भाग कहेंगे ना, हमने पहले देखा था, इसमें भी चर्चा आएगी आगे। वैसे यहाँ वेदनीय कर्म का सद्भाव है तो निमित्त रूप से विद्यमानता क्या बताता है कि वहाँ अव्याबाध सुख नहीं है, ऐसा कहेंगे हम उसको, इसलिए उसका नाम अव्याबाद ही, वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। अव्याबाधत्व जो गुण है आत्मा का वो प्रकट नहीं हुआ है, वहाँ कर्मों की सत्ता है ऐसा इतना ही बताना है। वो कर्म उनको दुख देते हैं, दुख में निमित्त होते, ऐसे कुछ भी बात है ही नहीं वहाँ। फिर भी दोनों में क्या डिफरेंस है कि इनके वेदनीय कर्म का उदय है और सिद्धों के नहीं है, तो नहीं है वो कर्म बता रहा है कि इसमें कुछ डिफरेंस है। निमित्त तो ज्ञापक होता है, बताने वाला होता है, तो कर्म है तो वो कुछ न कुछ बात बताएगा। जैसे अरिहंतों को असिद्धत्व है, सिद्ध नहीं हुए है, तो चारों ही कर्म वहाँ विद्यमान है, वो क्या बताते हैं कि ये अभी अरिहंत, अभी इनको सिद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको कहेंगे इनको असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है। अन्य कोई औदयिक भाव तो है नहीं है जब मोहजनित होते हैं, तो ये असिद्धत्व यही उनके लिए औदयिक भाव है, क्योंकि सिद्धपन अभी प्रकट नहीं हुआ है, चार कर्म विद्यमान है, कर्मों की विद्यमानता बताना है वहाँ। ये सुख गुण के प्रतिबंधक की बात विशेषार्थ में अलग समझाएंगे। और ऐसा क्यों कहा, सुख गुण का प्रतिबंधक यानी वो अनंत सुख में कोई बाधा नहीं है, अनंत सुख तो उनको प्रकट है। अरिहंतों को कितना सुख है, अनंत सुख है, तो अनंत सुख में बाधा नहीं है, परंतु वो अव्याबाध सुख प्रकट नहीं है, इतना ही बताना है, विशेषार्थ में और क्लियर होगा आपको, इसी का विशेषार्थ किया है नीचे। ये हम तो शंका पड़ रहे थे कि दूसरे वेदनीय कर्म का उदय, तीसरी लाइन ना, केवली में दुख को भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा अर्थात वेदनीय कर्म को दुखोत्पादक मान लेने पर केवली भगवान के केवलीपना ही नहीं बन सकता, यानी वे दुखोत्पादक तो है ही नहीं है, फिर भी यहाँ सुख का प्रतिबंधक क्यों कहते हो, आपका ही प्रश्न वो पूछ रहे हैं, अभी उसका समाधान करते हैं। यदि ऐसा है तो रहो, क्योंकि वह न्याय संगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्व की अपेक्षा और देश भेद की अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियों में भेद सिद्ध है। सलेपत्व लेप सहित है, अभी यहाँ कौन सा लेप है, कर्मों का लेप है, कर्मों से लिप्त है, लिप्त है ना, बंधे हुए हैं। तो अरिहंत भगवान में चार अघातीय की विद्यमानता है, वहाँ उस कर्मों से लिप्त है, तो उसको कहेंगे सलेपत्व है वहाँ, और सिद्ध कैसे है, कर्मों से रहित है, तो निर्लेपत्व है उनमें। और क्या है, देश भेद की अपेक्षा, देश भेद यानी पार्शल कुछ भेद है कि नहीं उन्हें, एक को हमने अरिहंत कहा, एक को सिद्ध कहा, यदि कोई भेद ही नहीं होता तो दोनों को एक ही नाम से पुकारते हम, तो यहाँ देश भेद कहा, कुछ भेद है, अनंत आत्मिक गुण तो प्रकट हो चुके हैं, फिर भी जो कुछ भेद है वो बताएंगे। विशेषार्थ, अरिहंत और सिद्धों में अनुजीवी गुणों की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है, अभी यहाँ अनुजीवी प्रतिजीव लाए, अनुजीवी और प्रतिजीवी यानी क्या, जो भाव स्वरूप जिसका वर्णन आता है उसको अनुजीवी कहते हैं, और जिसके कथन में अभाव स्वरूप कथन आता है, गुण अभाव स्वरूप नहीं है, गुण तो हमेशा होंगे, गुण उसी को कहेंगे जो द्रव्य में विद्यमान है, फिर भी उसको प्रतिजीवी कब कहते हैं, अभाव स्वरूप यानी कथन उनका अभाव स्वरूप आता है। जैसे आत्मा में अरस नाम का गुण है, पुद्गल में रस नाम का गुण है, तो आत्मा में रस है कि नहीं है, नहीं है, परंतु आत्मा में वो गुण नहीं है ऐसा नहीं है, अरस नाम का गुण है, वो कैसा है गुण, रस के अभाव स्वरूप ऐसा एक गुण है अलग से विद्यमान आत्मा में, खाली ऐसा नहीं कि पुद्गल में रस है और आत्मा में रस नहीं, वो तो उसका नास्तिक का कथन होगा, वैसा नहीं है, अरस नाम का एक गुण आत्मा में विद्यमान है, पुद्गल में स्पर्श गुण है, आत्मा में एक गुण है कि उसका नाम है अस्पर्श गुण आत्मा में विद्यमान है, तो उसका जो कथन है वो अभाव स्वरूप में हम कथन करते हैं तो उसको हम प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अनुजीवी यानी ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, वो कैसे उसका भाव स्वरूप, उसका हम भाव प्रकट रूप से बता सकते हैं ना, तो पॉजिटिव में कथन होगा, उसका कथन की बात है। गुण सभी गुण तो है ही है, विद्यमानता सभी गुणों की है, जिसका वर्णन पॉजिटिव रूप से आता है ज्ञान दर्शन वीर्य हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हमको अस्पर्श गुण डिफाइन करना है तो हम वो रस का अभाव का वो उसका सहारा लेना पड़ेगा, अभावात्मक वर्णन करना पड़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। आत्मा में रस गुण नहीं है तो बात है ही, ये तो है यानी ये तो आप कह सकते हैं, परंतु अरस नाम का एक गुण आत्मा का है। अभी पुद्गल में अचेतनत्व नाम का गुण है पुद्गल में, यानी पुद्गल में ज्ञान नहीं है तो सामान्य कथन हुआ, परंतु पुद्गल में ऐसा कौन सा गुण है कि उसमें ज्ञान नहीं है, तो उसमें अचेतनत्व नाम का गुण है, वो पुद्गल का प्रतिजीवी गुण कहलाएगा, और अरस है वो आत्मा का प्रतिजीवी गुण कहलाएगा। चल अभी अनुजीवी प्रतिजीवी की पढ़ेंगे हम यहाँ। देखो
देखिए हाँ। जो जो अन्य द्रव्यों के विशेष गुण है वह आत्मा के लिए प्रतिजीवी गुण है, जैसे गति
अभावात्मक हाँ। हाँ,
गति हेतुत्व नाम का गुण कौन से द्रव्य का है हाँ? धर्म द्रव्य का, तो जीव में अगति हेतुत्व नाम का गुण है, स्थिति हेतुत्व ऐसा ले लेना सब में, ऐसे अनेक जो अभी हम तो यहाँ विशेष रूप से तो पुद्गल द्रव्यों के गुणों के लिए अधिक जानते हैं, और ऐसा हमने ये भी पढ़ा है क्या, स्तुति कहो या मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, ये जो सारी बातें हैं ना, तो ये आत्मा के गुणों की बात चल रही, पुद्गल में है और मेरे में नहीं है ऐसी बात नहीं, मेरे में अरस है, मेरे में अरूप है, इस तरह लेना, तो इनको प्रतिजीवी गुण कहा, तभी तो आनंद गुण बनेंगे क्यों साहब।
देखो ये विशेषार्थ पढ़ते हैं, अरिहंत और सिद्धों में अनुजीवी गुणों की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है, वहाँ क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, वो क्षायिक दान लाभ, वो सभी बराबर दोनों के समान, फिर भी प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा माना जा सकता है, यानी प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा उनमें भेद है। सिद्धों में अव्यवादत्व, वो सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व और अगुरु लघुत्व प्रकट हुए हैं, वे अरिहंतों में नहीं है प्रकट, ऐसा कहेंगे हम, और उसमें निमित्त रूप वो चार अघातिया कर्म भी है, तो प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा से दोनों में भेद है, इतना तो मानना पड़ेगा। परंतु प्रतिजीवी गुण आत्मा के भाव स्वरूप धर्म नहीं होने से, ये भाव अभाव स्वरूप की बात अभी हमने समझाई ना, अव्यवादत्व बाधा से रहित, अव्यवादत्व वैसे अवगाहनत्व वगैरह सब में लगा लेना वो, परंतु हाँ तत्कृत भेद की कोई मुख्यता नहीं है, यानी उसकी अगर मुख्यता नहीं लेंगे हम तो हम समानता कह सकते हैं। इसलिए सलेपत्व और निर्लेपत्व की अपेक्षा अथवा देश भेद की अपेक्षा ही इन दोनों में भेद समझना चाहिए, यानी आत्मिक गुणों की अपेक्षा से जो अनुजीवी कहे गुण ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सुख आदि सभी, उनकी अपेक्षा से कोई भी भेद नहीं है, फिर भी सलेपत्व यानी यहाँ कर्मों का सद्भाव है और निर्लेपत्व यानी उनके कोई भी कर्म का किसी भी कर्म का सद्भाव नहीं है, इस अपेक्षा दोनों में भेद है और एक देश भेद है, कुछ पार्शल भेद है ना, प्रतिजीवी गुणों संबंधी का भेद है वहाँ, इसलिए देश भेद कहा, देश भेद यानी पार्शल थोड़ा सा, थोड़ा भेद उनमें है, अरियंतों और सिद्धों में थोड़ा भेद है ना, एक सशरीर एक अशरीर एक कर्म सहित एक कर्म रहित है, इनके अनुजीवी गुण तो दोनों में प्रकट है परंतु प्रतिजीवी गुण अभी अरियंतों में प्रकट नहीं है और उनमें प्रकट है, इस तरह से थोड़ा भेद है। नहीं, जब वो चार रिमेनिंग अघाती कर्म नष्ट हो जाएंगे तब वहाँ अव्यवादत्व अवगाहनत्व सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गए। पूर्ण उसकी शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। टीकाकार ने जो ऊर्ध्वगमन और सुख आत्मा के गुण नहीं है इस प्रकार का कथन किया है, वहां पर उन दोनों गुणों का तात्पर्य प्रतिजीवी गुणों से है। ऊर्ध्वगमन से अवगाहनत्व, यानी वहां जो ऊपर बात की थी ऊपर से दूसरा पैराग्राफ में, जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबंधक आयु कर्म का उदय ऐसा लिखा था, उसमें ऊर्ध्वगमन यानी वहां क्या समझना, अवगाहनत्व यानी अवगाहनत्व प्रकट नहीं है ऐसा समझना, और सुख से जब वहां कहा था कि सुख का प्रतिबंधक है वेदनीय कर्म, तो सुख के लिए क्या समझना, अव्यावाद गुण का ग्रहण करना चाहिए, यानी अव्यावाद गुण का प्रतिबंधक कर्म वहां वेदनीय है ऐसा समझना। ऊपर से जो पहला समाधान है उसमें जो लिखा था ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबंधक है, उसमें समझना कि अव्यावादक हाँ जो गुण है उसका प्रतिबंधक है, सॉरी अवगाहनत्व, ऊर्ध्वगमन के अभाव है ना, अवगाहनत्व का अभाव है, और सुख गुण का प्रतिबंधक में क्या समझना, अव्यावादक का प्रतिबंधक। अब नीचे से दूसरी लाइन, क्योंकि आयु और वेदनीय के अभाव से होने वाले जिन गुणों को अवगाहन और अव्यावाद कहा है उन्हें ही यहाँ पर ऊर्ध्वगमन और सुख के नाम से प्रतिपादन किया है। जब सुख का प्रतिबंधक है कहा था तो वहां अव्यावादत्व का प्रतिबंधक है ऐसा समझना, जहां ऊर्ध्वगमन का प्रतिबंधक कहा था वहां अवगाहनत्व का प्रतिबंधक है ऐसा समझना, क्योंकि वे गुण अभी अरिहंतों में प्रकट नहीं है। जीव का ही गुण है, परंतु अनंत सुख तो प्रकट हुआ है, अब यहाँ कौन से सुख की बात कर रहे हैं जिसको प्रतिबंधक कहा है, अव्यावादत्व। अव्यावादत्व यानी कोई भी कर्म का वहां सद्भाव नहीं है इस अर्थ में ले लेंगे। ऐसे सिद्धों को नमस्कार हो, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब ये 26, 27 और 28 तीनों का यहाँ अर्थ कर देते हैं, ऊपर हम पढ़ेंगे। निहय विविहट्टकम्मा तिहुवन शिरसे हरा विहुव दुखा सुहसायर मज्जगया निरंजनानि चट्ठ गुणा अणवज्जा कय कज्जा सौवा वयवे हि दिट्ठ सौवट्ठा वज्जशिलत्थं भग्गय पडिमं वाभेज संठाणा मानुष संठाणा विहु सौवा वयवे हिणो गुणे हि समा सौविंदियान विषयम् जमेग देशे विजानंती। आपके पहले वाले प्रिंट में 27 की सेकंड लाइन, उसमें क्या लिखा है, वज्ज सिलत्थम, बीच में कुछ अस्पष्ट कुछ नहीं है ना, भग गया, ठीक है,
वो भो भो चाहिए क्या?
ठीक है, वो तो उन्होंने करेक्शन किया है, सिलत्थम के ऊपर बिंदी लगाई है,
वो नहीं हो सकता, वो तो वो होगा। चलो चलो ठीक है,
ठीक है, अभी समझना, अभी जो कुछ अभी अर्थ पढ़ेंगे उसका, बिंदी नहीं थी वो उन्होंने दी है बाद में, किसी ने दी है, करेक्शन की है, ऊपर बिंदी हाथ से लगाई हुई है हमारे इसमें, उसमें क्या है सिलत्थ के आगे क्या है अरविंद भाई दोषी, ये हाँ नहीं भ है ना, भ अकेला भ है कि ब और भ है, ब दिख रहा है वहाँ, अच्छा बिंदी उन्होंने बाद में दी है, हाँ ये ब लगाना, उसमें साइड में कर सकते हैं नीचे अंडरलाइन करके, पेंसिल से करना कोई भी करेक्शन पुस्तक में, नहीं बंदी रहने दो, बिंदी रहेगी क्योंकि फुटनेट में देखना सेकंड लाइन वज्जसिलत्थम सिग्गय पडिमम, जैसे यहाँ भग गए पड़िमम है ना, वहाँ सिख गए पड़िमम लिखा है, यानी उसके रेफरेंस दिया है। तो सिलत्थम बराबर है, वो बिंदी लगाना चाहिए। अब इसका अर्थ करते हैं। आधा ब। अब ऊपर से नीचे का अर्थ हम एक एक को थोड़े थोड़ा देके उसके साथ मिलान करेंगे। देखो, निहय विविहट्ठ कम्मा, जिन्होंने नाना भेद रूप आठ कर्मों का नाश कर दिया है। निहय ने नाश किया, विविहट्ठ कम्मा, विविध रूप अनेक भेद रूप आठ कर्मों का नाश कर दिया है। तिहुवन सिर सेहरा, जो तीन लोक के मस्तक के शेखर स्वरूप है। त्रिभुवन का मस्तक है वो, लोकाकाश का ये ऊपर का भाग है ना, सिद्धालय में विराजमान है, ये सिद्धों का वर्णन चल रहा है। तो त्रिभुवन के कभी कभी आते हैं ना शिखर चूड़ामणि है, ऐसा भी आता है कहीं कहीं वर्णन। सेहरा सेहरा है, जो जैसे सेहरा बांधते हैं या मुकुट है, तो उसके ऊपर का जो चूड़ामणि होगा मुख्य हीरा वैसा तुरा। तो तीन लोक के मस्तक के शेखर स्वरूप है, विहु व दुखा, दुखों से रहित है। अब सेकंड लाइन, सुह सायर मज्ज गया, सुखरूपी सागर में निमग्न है। निरंजना निरंजन है, निच यानी नित्य है, अठ गुणा यानी आठ गुणों से युक्त है। अणवज्जा कयकज्जा यानी अनवद्य यानी निर्दोष है, और कयकज्जा यानी कृतकृत्य है। सौवावयवे ही दिठ सौवट्ठा, जिन्होंने सर्वांग से सर्व अवयवों से, यानी अभी कौन से अवयव रहे उनके, सभी आत्म प्रदेशों से, यानी ना वहाँ कोई हाथ पैर ऐसे कहेंगे नहीं, अभी सिद्धों के हाथ पैर कुछ कहेंगे नहीं, तो सर्वांग से दिठ सौवट्ठा समस्त पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है। वज्जशिलत्थम भग्गय पड़िमम, जो वज्रशिला में उत्कीर्ण प्रतिमा के समान अभेद्य आकार से युक्त है, यानी उनका जो आकार है वो अभेद्य है, ठोस ठोस है, घन स्वरूप है। और क्या कहते हैं, वाभेज्य संठाना, इसलिए वाभेज्य संठान यानी वो वज्रशिला के समान, वो वज्रशिलत्थम है। वाभेज्य संठान यानी वो अभेद्य आकार, वाभेज्य संठान यानी अभेद्य आकार है उनका। मानुष संठाना विहु सौवा वयवे ही नो गुणे ही समा, क्या कहते हैं, जो सब अवयवों से पुरुषाकार होने पर भी मानुष संठान यानी अंतिम उनके उनका कौन सा शरीर था, मनुष्य, वो भी पुरुष, तो पुरुषाकार वे भी वहां स्थित है। पुरुषाकार है, मानुष जैसा आकार है, परंतु मनुष्य के जैसे अन्य कोई उनके गुण नहीं है ना। क्या कहते हैं, सब अवयवों से पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है। कि मानुष संठाना भी हो सवावयवे ही नो गुणे ही समा, गुणों में समानता नहीं है, मनुष्य में और सिद्धों में गुणों में समानता नहीं है। आकार मनुष्य जैसा है, परंतु उनके गुण तो सिद्धों के अलग है। और क्या है उसका कारण क्या है, देखो, सविंद्रियाण विषयम जमेग देशे भी जानती। मनुष्य क्या करते हैं, इंद्रियों के पदार्थों को जानते हैं, इंद्रियों के जो विषय है उनको जानते हैं। तो क्या हम इंद्रियों के विषय उन सबको जान लेते हैं, कि उसमें भी लिमिटेशंस है, क्योंकि वो हमारे सामने होने चाहिए और हमारी दृष्टि के भी लिमिट है, उसके पीछे का हम यहाँ से दादर का कुछ नहीं देख सकते, वहाँ की बड़ी बड़ी चीज़ें भी यहाँ से नहीं दिख रही, ऐसा होता है ना। तो हम वहाँ कहाँ गए थे, वो सातारा के पास, वहाँ बड़ी बड़ी क्या पवन चक्की है, इतनी बड़ी, 200 फीट ऊपर, और वो एक एक पंखा उसका 60-60 फीट का था, इतने बड़े वो घूम रहे। और फिर ऐसा बीच में ऐसा फॉग आता था कि 50 मीटर के ऊपर के ऐसे कुछ, वहाँ कुछ नहीं, बस आकाश, बिल्कुल प्लेन आकाश जैसा दिखता था, कुछ नहीं बीच में, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फिर भी कुछ नहीं थे, ऐसे सैकड़ों है वहाँ, ऐसा लगता कि आगे कुछ नहीं, हम ऐसे कि पर्वत के टोंक पर ऐसे खड़े और पीछे पीछे खाली आकाश ही आकाश है, ऐसा लगता था। यानी सामने विद्यमान होते हुए भी ये इंद्रियों की पराधीन था, कि मनुष्य कैसे है कि इंद्रियों से दृश्यमान जो या इंद्रियों से जो जाने जाते पदार्थ उनमें भी मर्यादा है, उनमें भी एक देश को ही जानते, सबको नहीं जान सकते। तो क्या कहते हैं, संविंदियान विषयम जमेग देशे भी जानंती, कौन? मनुष्य। अभी नीचे का वाक्य जरा उलट पुलट जरा करेंगे हम, क्या कहते हैं कि जो सब अवयवों से पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है, क्योंकि पुरुष क्या करते हैं, जो यानी जो पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश में भी जानते हैं, वो भी पहले लगाना चाहिए कि जो पुरुष, वो जो के पहले से ब्रैकेट करो या जो मनुष्य करो, हाँ जो मनुष्य कर के जो, हाँ बताना, जो मनुष्य,
देखो यहाँ पर जो क्योंकि जो लिखा है ना उसके आगे काक पद यानी ऊपर लिखने का आपको, वे मनुष्य जो संपूर्ण,
नहीं जो के आगे मनुष्य लिखो तो चले जाएगा,
हाँ जो जो,
जो मनुष्य,
अच्छा मैंने हाँ। ऐसा किया है वे मनुष्य,
ठीक है हाँ।
जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भी
एक देश में जानते हैं,
विषयों को के बाद में भी,
वो आगे वाला भी वहाँ पर ले लेना,
एक देश ही जानते हैं, भी को निकाल कर और देश में से में निकाल देना, तो क्या होगा, इंद्रियों के विषयों को भी एक देश ही जानते हैं,
एक देश में कहो चलेगा, एक देश जानते करो चलेगा, ये तो भाषा का ऐसा है,
नहीं अपने को समझने के लिए करना है ना,
देखो क्या कहना चाहते हैं, हाँ हमारे समझने के लिए डालना है, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, उस वाक्य का अर्थ कैसे करना है ये हमारे समझ में आवे, क्योंकि आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश में भी जानते हुए सिद्ध है, ऐसा अगर कोई पढ़ेगा डायरेक्ट तो ये सिद्धों को उसका वे सिद्ध इंद्रियों के विषय को एक देश में जानते ऐसा अर्थ होगा उसमें से, ऐसा गलत अर्थ नहीं हो, इसलिए जानते हैं के बाद में भी कॉमा लगा देना, वे सिद्ध है वो ऊपर के जो अन्य विशेषण देखे हमने उसके लिए वे सिद्ध है, और जो बीच में जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भी एक देश में जानते हैं ये मनुष्यों के लिए डाला है उन्होंने वाक्य। इंद्रियों के विषयों को भी एक देश कौन जानता है? मनुष्य। यानी यहाँ क्या विरोध बताना है कि सिद्धों का आकार मनुष्य जैसा होने पर भी मनुष्यों के गुणों से सिद्धों के गुण भिन्न है। मनुष्य तो इंद्रियों के विषय को भी वो उसमें से भी लिमिटेड जानते हैं और सिद्ध तो पूरे सबको ही जानते हैं। ख्याल है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अभी जो बीच में डालने को कहा था ये हम सीधा पढ़ जाएंगे तो ये सिद्धों का ही विशेषण नहीं बनावे, इसलिए बता दिया। ख्याल आता है? लास्ट में कॉमा लगा देना, वे सिद्ध है के पहले एक कॉमा लगा देंगे तो जो क्योंकि वाला जो है वो मनुष्य के लिए लिखा है ये सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ तक तो सिद्धों का स्वरूप बताया, अब आचार्यों का स्वरूप यहाँ से चलेगा। नमो आयिरियाणम, आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो, जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य इन पांच आचारों का स्वयं आचरण करते हैं, पंचाचार से युक्त है कहते ना, तो उसके लिए ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन्हें स्वयं आचरण करते हैं और उनके संघ में, आचार्यों के संघ में जो अन्य उनके शिष्य है उनसे वैसे आचार करवा लेते हैं, तो दूसरे साधुओं से आचरण कराता है उसे आचार्य कहते हैं। ये आचार की मुख्यता से, पंचाचार की मुख्यता से उनका नाम है आचार्य। अब वे कैसे आचार्य, उनका वर्णन है, जो 14 विद्या स्थानों का पारंगत है, कल बात आई थी ना ये 14 विद्या स्थान यानी 14 पूर्व समझना, यहाँ 14 पूर्व जब कहेंगे, जिसने MD पास किया है उसके लिए MBBS लिखना जरूरत है क्या? तो जब हम कहेंगे 14 पूर्वों का पारंगत है तो ये पहले वाले यानी द्वादश अंग का पारंगत है, इसे समझना। जो 14 पूर्व जानता है वो द्वादशांग को पूरा जानता है। अब उसमें आगे कोई ऐसे होगी कि 10 पूर्व को ही जानता है, 12वें अंग में से 10 पूर्व को ही जानता है, तो इसको 14 पूर्वधारी कहेंगे, उनको 10 पूर्वधारी कहेंगे। या कभी कभी 14 यानी इतने सभी अंगों का भी ज्ञाता नहीं है तो अकेले एक अंग का ज्ञाता कहेंगे। यानी जितना कुछ जानते हैं उसकी अपेक्षा से उसमें ये भेद है, पर मैक्सिमम कितना जानते हैं उसके लिए यहाँ 14 पूर्व की बात की। जो 14 विद्यास्थानों का पारंगत है यानी द्वादशांग का पारंगत है, 11 अंग का धारी है यानी कि कोई तो 11 अंग के धारी हो गए, अथवा आचारांग मात्र का धारी है। ये आचारांग कौन से नंबर का अंग है? पहला। हम पूजा में कहते हैं पहलो आचारांग बखानो दूजो सूत्र वगैरह वगैरह, ये पहले आचारांग। आचारांग मुनि संबंधी, ये क्या बताते हैं आचारांग में, क्या कौन सा वर्णन है? मुनि संबंधी जो उनका व्यवहार की क्रिया है और जो निश्चय व्यवहार दोनों का जो कथन है वो आचारांग में बताया जाता है। तो आचारांग का ज्ञाता है वे, अथवा तत्कालीन स्वसमय और पर समय में पारंगत है। पर समय में पारंगत है का क्या अर्थ है? और स्वसमय में पारंगत यानी यहाँ कितना शास्त्र जानते हैं उसकी बात है। समय शास्त्र, समय का अर्थ होता है शास्त्र, दर्शन, जैन दर्शन के भी ज्ञाता है और पर दर्शन के भी ज्ञाता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या क्या बात है, तत्कालीन स्व समय पर समय का अर्थ क्या है, अभी कितना शास्त्र अवेलेबल है उसकी बात है। अभी तो 11 अंग का कोई पाठी नहीं है, अभी तो द्वादश अंग का कोई पाठी नहीं है, अभी पूरे एक अंग का भी पाठी कोई नहीं है, अंग के भेद जो पूर्व का उसका भी पाठी नहीं है। अभी कितना अवेलेबल है, अभी षटखंड आगम है, अभी धवला है, अभी मान लेते मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, अभी समय सार है। तो तत्कालीन जो स्व समय पर समय है, तत्कालीन जैन दर्शन की जो विषय वस्तु है उसके जो 7 तत्व है और जो कुछ उसका मर्म है उसको भी जानते हैं। और पर समय को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अन्य मत के तत्व सुनते हैं तो उससे जैन धर्म की स्पेशलिटी क्या है, वो अन्य मत का खंडन कैसा करना और जैन मत का मंडन कैसा, यानी मतार्थ जिसको कहते हैं, तो उसमें जो पारंगत है उनको आचार्य। स्व समय, वो समय सार वाला स्व समय यहाँ नहीं लेना, ख्याल है ना? तो स्व समय का अर्थ है जैन दर्शन, क्यों तत्कालीन स्व समय लिखा है ना, और पर समय यानी अन्य दर्शन, अन्य मत। तो बौद्धों का क्या मत है? क्योंकि ये सारे जो विविध मत समक्ष आया, एक स्यादवाद मंजरी नाम का एक ग्रंथ आता है, उसमें सभी दर्शन यानी सभी धर्मों की इतनी डिटेल वर्णन है, उसमें उनके कितने तत्व है, उनका क्या मत है, वो कैसा कैसा मानते हैं, उनकी क्या क्या कल्पना है, बिल्कुल विस्तार से बताकर फिर कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। स्यादवाद मंजरी नाम का एक ग्रंथ है, स्यादवाद मंजरी, उसमें ये बातें हैं। अभी ये भी जो फिलोसफी पढ़ते हैं ना, अभी ये जैन दर्शन जो पढ़ते हैं, अभी जयपुर में ये विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, उनको तो कॉलेज में ऐसा ही विषय होता है, सभी दर्शनों का अभ्यास करना, वहाँ 6 दर्शन है मुख्य, तो सभी का डिटेल अभ्यास करना पड़ता है, हर एक के क्या मत है, उसमें कितने, अभी हमारे 7 तत्व है तो उनमें कितने तत्व है, उसका क्या क्या अर्थ होता है, वो किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं, ये सभी बातें डिटेल में उनका होती है। वैसे आचार्य जैन दर्शन का भी और अन्य दर्शनों का भी उनको गहरा अध्ययन होता है, तभी तो जैन दर्शन सच्चा कैसे है और अन्य मत से कौन कौन सी उसमें, क्योंकि हम शिष्यों को समझाते हैं ना, क्योंकि ऐसे कोई कंपार्टमेंट नहीं है, टाइट कंपार्टमेंट, ये बौद्ध मत है, ये सांख्य मत है, हमारे में भी वैसी मान्यताएं चलती हैं, तो ऐसे शिष्यों को ये बौद्ध मत सांख्य मत कहने में आता है, हमारे में कोई उसके बारे में जो अज्ञान, क्योंकि अज्ञान तो बिना सिखाए हुए होता है, ज्ञान के लिए तो मेहनत करनी पड़ रही है ना अपने को, तो ये तो मान्यता है कि सामने गेय नहीं होगा तो पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा, ये तो मान्यता किसी ने सिखानी पड़ती, क्योंकि हमें क्या, अरे सामने पदार्थ नहीं तो कैसा जानेंगे, हम कुछ नहीं दिखाते, अभी जानो, ऐसा कह सकते हैं ना, तो ये तो मान्यता बिना सिखाए चलती है। तो ऐसी हमारे में कोई मान्यता नहीं हो और वो अन्य मति की कैसी होती है और उसको खंडन कैसा करना, इसमें वे पारंगत होते हैं आचार्य। तो इसलिए तत्कालीन लगाया इस पहले, या अकेले परद्रव्य की बात करेंगे तो तत्कालीन लिखने की जरूरत नहीं थी। तो तत्कालीन में अभी कौन से अपने शास्त्र अवेलेबल है, अभी कौन सी मतें चलते हैं, तत्कालीन में कौन कौन सी मतों का कैसा खंडन करना है, इसलिए तत्कालीन स्व समय और पर समय में पारंगत है और मेरु के समान निश्चल है। तत्वों में भी अड़िग है, अपने आचारों में भी अड़िग है और स्थिरता में भी उतने ही अचल है, मेरु के समान, पृथ्वी के समान सहनशील है और जिसने समुद्र के समान मल अर्थात दोषों को बाहर फेंक दिया है। हम समुद्र की सैर करने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ ज्वार भाटा चलता है, हाई वेव लो वेव कुछ क्या कहते हैं आप, हाई टाइड लो टाइड, तो क्या होता है, तभी अंदर का जो कुछ कचरा है ना, लोग क्या करते हैं समुद्र में सब कुछ कचरा फेंक देते हैं, जब हाई टाइड होते तो पूरा कचरा अंदर से बाहर फेंक के तो किनारे पे आ जाता है, तो वो दोषों को ऐसे क्या है, समुद्र के समान मल अर्थात दोषों को बाहर फेंक दिया है जिन्होंने। और जो सात प्रकार के भय से रहित है उसे आचार्य कहते हैं। आपको सात भयों के नाम मालूम है, कौन कौन से है, इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, मरण भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय और अरक्षा भय, ये सात भयों से रहित है। सम्यक दृष्टि भी सात भयों से रहित है और मुनि भी रहित है, तो क्या डिफरेंस है। हाँ, सम्यक दृष्टि तो श्रद्धा अपेक्षा है, परंतु ये चारित्र अपेक्षा स्थिर है। सामने से सिंह भी आ जावे और मुनि चल रहे हो तो वो अपना रास्ता बदलेंगे नहीं, या भय से ऐसा कुछ विचलित नहीं हो जाएंगे, चारित्र अपेक्षा स्थिरता है। सम्यक दृष्टि को भी वो भय नहीं होते कहते हैं तो वहाँ श्रद्धा की अपेक्षा, वो सिंह को देखेगा भागेगा तो उसकी भूमिका में वो कोई दोष नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके तो तीन कषाय भी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वो शरीर को स्व समझता है, बीमारी आएगा तो वो भी घबराएगा, वो भी दौड़ेगा डॉक्टर के पास, तो ये हमारी समझ में नहीं आता ना, तो हमें ऐसा लगता है अरे ये कैसा है, यानी सम्यक दृष्टि को तो हम भगवान ही समझते हैं, तो उसमें वो तो अरे ये ऐसा दोष कैसा वैसा कैसा ये चर्चा करते हैं। ये श्रद्धा अपेक्षा और चारित्र अपेक्षा अलग बात होती है, अरविंद भाई का हमेशा का प्रश्न है। वो बोलते हैं हमेशा लिखना है ये प्रश्न, क्योंकि जो चारित्र अपेक्षा जो दोष आते हैं, जैसे रामचंद्र ने लक्ष्मण को उठाकर 6-6 महीने तक वो उसका कलेवर जो मरने के बाद उसको खाने खिलाने पिलाने की चेष्टा की, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा तुम्हारा सम्यक दृष्टि, ऐसी बातें आती है ना। तो उसे आचार्य कहते हैं। इसको 29 को ऊपर पढ़ना पड़ेगा ना, तो ऊपर का पढ़ेंगे हम। पवयन जल ही जलो यर नायामल बुद्धि शुद्ध छावासो मेरु अनिपकंपो सूरो पंचाननो वज्जो देश कुल जाय सुद्धो सोमंगो संग भंग उम्मुको गयनौ अनिरुवलेवो आयरियो एरिसो होई संगह नुग्गह कुसलो सुतत्थ विसारो पहिय कीर्ति सारण वारण सोहन किरियुज्जुतो हुआयरियो। अभी इसमें बहुत से उनको रूपक जैसे उपमा देकर समझाया है, जैसे सिंह के समान है, हाथी के समान है, मेरु के समान है, सूर्य के समान है, सागर के समान है, ऐसे पशु के समान है, मृग के समान है, वो क्यों समान है, तो उसकी कौन सी विशेषताओं के साथ कंपैरिजन की है, उसकी बातें अभी ये पूरे इसमें समझाएंगे इस पैराग्राफ में। इसको हम अब कल ले लेंगे, अभी तो समय हो चुका है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो